तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस बुधवार के प्रभात जागृति कार्यक्रम में उपस्थित रहे सब लोग सवेरे से जप करने के लिए, और आज इस प्रभात जागृति समय प्रोग्राम के समय अमलकी एकादशी का व्रत भी है, और अमलकी एकादशी व्रत का महात्म्य जो है वो ब्रह्मांड पुराण में आता है। इसमें बताया जाता है कि अमले की व्रत के एकादशी के व्रत के पालन करने से कैसे जीव भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो संक्षेप में इसकी कहानी ऐसी है कि एक राजा था और भक्त था भगवान का। वह अमले के व्रत करने के लिए सभी परिवारजनों को प्रजाजनों को लेकर विष्णु भगवान की पूजा करता है, और अमलकी जो वृक्ष है, मेरे ख्याल से अमलकी आमला ना, हाँ, अमलकी वृक्ष को भी स्थापन करता है और अमलकी वृक्ष की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और रात भर भजन कीर्तन करता है निवृत्त होकर वास रखते हुए। तो उस समय एक शिकारी, मतलब जिसको सामाजिक दृष्टि से शूद्र कह सकते हैं, जो शूद्र कैटेगरी में आता है, उसको भजन में कोई रुचि नहीं है, केवल वो जानवरों को मारता है, ऐसे व्यक्ति वहां पर आके बैठता है कल विश्रांति लेने के लिए रात को, भूला भटका, और रात भर अनायास ही उसके कान पर, जो भूखा तो है ही, सबका व्रत चल रहा है तो उसको भी अन्न नहीं मिलता है, लेकिन वो वहां पड़े रहता है और राजा और प्रजाजन उनके साथ में बैठकर भगवान का भजन सुनता है। तो अगले जन्म में वो खुद राजा बनता है, बहुत लंबी कहानी है। इसके परिणाम से केवल अनजाने में उन्होंने कुछ समय के लिए अमलकी एकादशी का व्रत पालन किया। अगले जन्म में वो स्वयं शूद्र जन्म से उसकी उन्नति होती है, राजा बनता है, और राजा बनने के बाद एक दिन वो जब खुद जाता है जंगल में शिकार लेने के लिए, तो थककर सो जाता है, तो जंगल के भिल्ल लोग जो है वो अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो वो सोया रहता है और उनके शस्त्र जो है उसको छूते ही नहीं। भिल्लों को लगता है कि ये राजा ने हमारे पूर्वजों को परिवारजनों को मार के हमको इस तरह से रखा हुआ है, यही व्यक्ति है वो, तो सब लोग उसको अटैक करते हैं शस्त्र लेकर, लेकिन कोई भी शस्त्र उस पर स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा ना, तो प्रहलाद के ऊपर राक्षस लोग शस्त्र चलाते, लेकिन शस्त्र वो चलते नहीं उसके ऊपर, उस तरह से उसकी नींद भी नहीं खुलती है, सोया रहता है, और वो बिल्ले लोग उसको कितना मारने का प्रयास करते हैं वो मरता ही नहीं, कुछ भी होता नहीं उसको। उसके बाद उसके शरीर से एक दिव्य देवी उत्पन्न होती है और देवी सब राक्षसों को, जो बिल्ले लोग हैं सबको मार डालती है, और कुछ देर बाद उसको होश आता है, वो देखते हैं कि भैया बड़े खूंखार बिल्ले लोग जो है वो मर चुके हैं। वो भगवान से प्रार्थना करता है, कृपा करके मुझे जिसने बचाया उसका मुझे दर्शन दो। तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी शरण ली है और एकादशी का व्रत जो मुझे बहुत प्रिय है इसका पालन किया है, इसलिए मैंने तुम्हारा रक्षण किया है। और इस तरह से उस जीवन के अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। ये छोटी सी कहानी है अमले के व्रत की, और हमारे लिए इसमें सार यही है कि हर एकादशी व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी कर्मकांडी व्रत बताए गए हैं सोमवार से रविवार तक, जितने भी देवी देवताओं के व्रत बताए गए हैं, उस सारे व्रतों का जितना महात्म्य है, वो सारे व्रतों का महात्म्य और लाभ और पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति जो भी उसमें निहित है वो सभी एकादशी व्रत में सम्मिलित की गई है। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे किसी भी देवता का और किसी भी दिन का, किसी भी त्योहार का व्रत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एकादशी व्रत जो है साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। और आप लोगों को सुनकर ये बहुत खुशी होगी कि अनेक प्रकार की गोपियां थी, अनंत प्रकार की गोपियां, कहां से लीलाओं का संबंध है, अनेक युगों से उनका संबंध होते हुए अल्टीमेटली वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हुई। तो उसमें एक प्रकार की गोपियां थी जो राधा रानी को पूछती है कि आप इतना भगवान को कैसे वश में कर लेती, तो वो कहती है कि मैं एकादशी व्रत का पालन करती हूं और केवल एकादशी व्रत का पालन करते ही करते करने से ही मैंने श्री कृष्ण को मेरे वश में कर लिया है। उनको देखती थी कि राधा रानी के पीछे कितने भगवान प्रेम से विवल है। तो गर्ग संहिता में आप पढ़ेंगे तो गर्ग में पूरा दो अध्याय दिया गया है कि राधा रानी उन गोपियों को बैठकर 26 एकादशियों का वर्णन कर रही है, डिटेल एक एक एकादशी का वर्णन किया कि क्या एकादशी का महात्म्य है, क्या करना चाहिए और कैसे पालन करना चाहिए और उसके अंत में आप सब लोग श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय हो जाओगी। तो स्वयं राधा रानी ने एकादशी का महत्व बताया। ऐसा नहीं कि कर्मकांडी पुराण में सब जगह दिया गया है तो हम लोग इसको पालन करते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड पुराण में कुछ फलश्रुति के रूप में उसको वर्णन किया होगा, लेकिन गर्ग संहिता ये कृष्ण लीला के ऊपर विस्तारित भाष्य है गर्ग मुनि का, और उसमें स्वयं राधा रानी अपने श्रीमुख से एकादशी व्रत का वर्णन करती है। और इसका फल क्या है, श्री कृष्ण को हम प्रिय हो जाते हैं। हमको श्री कृष्ण वश में नहीं करना है, हम उनके वश में होना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एकादशी का व्रत जो है मनुष्य जीव के लिए बड़ा वरदान है, क्योंकि केवल इसी को करने से सारे व्रतों का लाभ भी होता है, सारी प्रजा सारे विश्व भर के जीव और उनके मालिक स्वामी श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा से जीव जो है वो भव रोग से मुक्त हो जाता है। इतना शक्ति है इसके। 10 इंद्रियों पर, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन पर नियंत्रण पाने के लिए ये एक व्रत भगवान ने हमको दिया। इसके करने से, क्योंकि उसका हेतु जो है वो कोई कर्म कांड नहीं है, उसका हेतु कोई ऐसा नहीं है जिससे हमें समृद्धि मिले, पैसा मिले, अच्छी संतति मिले, हम कन्या के अच्छी घर में शादी हो जाए और ब्राह्मणत्व प्राप्त हो और ब्रह्म ऋषि व्रत प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, ऐसा कोई इसका लाभ नहीं है। इसका लाभ केवल एक मात्र है, एकमात्र श्री कृष्ण की संतुष्टि। और श्री कृष्ण जब संतुष्ट हो जाते हैं तो और कोई प्राप्ति करने जैसी वस्तु इस विश्व में, इस जीवन में रहती नहीं, बचती नहीं। देयर नथिंग विच रिमेन्स टू बी अचीव्ड, सब सिद्धिर हरितोषणम। और ये बड़ी ही कुशलता से ये व्रत जो है हमें श्री कृष्ण भगवान की संतुष्टि प्राप्त कराता है। इसलिए एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं, धान्य और हरी सब्जियां और क्या कहते हैं पल्सेस, तृण धान्य और कड़ धान्य को नहीं खाते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, उपवास रहने, भगवान के पास रहने का प्रयास करते हैं, चेतना से जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए भी उनकी चेतना में मग्न रहने का प्रयास करते हैं। अधिक तौर पर आम दिनों से अधिक मात्रा में प्रयास करते हैं और अगले दिन उसको व्रत को छोड़ते हैं। हो सके तो ब्राह्मणों की वैष्णवों की सेवा करते हैं, अधिक आम तौर से अधिक जप करते हैं और इस तरह से इस व्रत को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों को कुछ रोक कर, इंद्रियों को जो भोग है वो कुछ रोक कर, वो भोग भोगने में जो शक्ति खर्च होती है उस शक्ति को बचाकर, उस शक्ति को भगवान के ध्यान पूजन भजन में लगाने से एकादशी व्रत जो है संपन्न होता है। इसके भाव को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। और अभी श्रीमद् भागवत में ये जो कथा चल रही है इसका बैकग्राउंड इस प्रकार से है, संक्षेप में आपको बता देती हूं। पहले श्लोक में कहा गया है कि अपने पिता की आज्ञा को पाकर राम यानी कि परशुराम जी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। इसके पीछे बैकग्राउंड ऐसा है कि परशुराम जमद अग्नि के पुत्र हैं और एक बार राजा कार्तवीर्य अर्जुन, बहुत ही महान राजा था, शक्तिशाली एक राजा था, ऐश्वर्य संपन्न था, एक बार अपने अनंत सेना को लेकर वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आता है और विश्रांति लेता है और भोजन की अपेक्षा करता है। कुछ ही समय पर, बहुत कम समय में, बहुत बड़ा विस्तार पूर्वक भोज यानी कि बड़ी फीस्ट का आयोजन होता है जंगल में साधु की कुटिया में, जो एकदम विरक्त साधु है, उस पर कोई ऐश्वर्य नहीं, उसके तरफ से कुछ ही समय में अनंत सेना के लिए अनंत प्रकार के व्यंजनों का अनगिनत भोग भोजन जो है वो तैयार किया जाता है। जब राजा अपने सैनिकों के साथ उस भोग को खाता है तो वो समाप्ति नहीं होता, इतने व्यंजन है, इतनी मात्रा में है, इतना स्वादिष्ट है, और देख रहा है कोई साधन नहीं है, कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी इतना स्वादिष्ट और इतना अमूल्य भोजन करता है, तो उसके लिए भी अमूल्य था, राजा के लिए क्या अमूल्य है, सबके लिए सब ऐश्वर्य उसके पास में है। तो वो प्रश्न करता है किसी को, पूछता है, इंक्वायरी करता है कि क्या इनके पास कैसे हो गया सब इंतजाम इतना, तो उसको पता चलता है कि इनके पास काम धेनु गाय है, और वो काम धेनु गाय को केवल उन्होंने बताया कि लोग आए हैं इतनी संख्या में, इनके लिए बहुत बढ़िया भोजन का इंतजाम किया जाए, तो तत्क्षण सब प्रकट हो गया और उनको परोसा गया। तो इतना महान राजा होने पर भी उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, अरे मैं राजा हूं और सब कुछ विश्व में जितनी प्रॉपर्टी है वो राजा की प्रॉपर्टी, तो ये काम धोनी मेरे पास होनी चाहिए, इनके पास क्यों है? वो मांगता है उनको, राजा जमदग्नि कहते हैं कि ये तो मेरे यज्ञ के लिए जो घी दूध जो चाहिए पंचगव्य ये मुझे देती है, और भगवान की सेवा के लिए भगवान को पसंद करने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं इससे प्राप्त करता हूँ, यही मेरे भजन भूजन का साधन है, ये मेरी इंद्रियों का साधन नहीं है, जो मैं भजन भूजन करता हूँ उसके लिए आवश्यक है। तो पहले विनती से फिर जोर से फिर बलपूर्वक पूछता है, फिर भी मना कर देते हैं, तो फिर उसको छीन के लेके जाते हैं। जब ऐसा अपमान होता है तो परशुराम जी जो पुत्र है वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, वो जाकर कार्तवीर राजा के राज्य पर महिष्मतीपुरी पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करके राजा को मार डालते हैं, और सब सेना को मार डालते हैं, अब लौट के आते हैं, तो उनको लगा लगता है कि पिता हमें बहुत आशीर्वाद देंगे, काम देने को वापस लेकर आए। पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं, कहते कि राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि होता है, द किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, प्रजा के गुरु समान होता है और हमारा आश्रयदाता है, हमें ऋषि मुनियों को राक्षसों के और दैत्यों के आतंक से बचाता है, हमारा वो पालनहार है, हमारा मेंटेनेंस उसके ऊपर डिपेंड है, आपने ये सही नहीं किया, ये सब आपने आवेश में आकर किया हुआ कार्य। तो फिर पिता उसका आज्ञा देते हैं, जाओ एक साल तीर्थ यात्रा भ्रमण करो, जहां पवित्र क्षेत्रों में जाकर स्नान करो और पश्चाताप करो। तो ये उसका बैकग्राउंड है। इसके लिए जमदग्नि जी अपने पुत्र को एक साल तक तीर्थ यात्रा भ्रमण का आदेश देते हैं, और वो करके परशुराम जी जो भगवान के सत्याभिष अवतार हैं वो लौट के आते हैं। उसके आगे की कथा ये है, लौट के आने के पश्चात उनकी माता जो है रेणुका देवी, वो अपने पति के यज्ञ की सहायता के लिए स्वयं गंगा नदी में कलश लेकर जल लेने को जाती है, और जल लेते समय आप जानते हैं देवी देवता जो है वो कई पृथ्वी पर अलग अलग स्थान है, त्रिकुट पर्वत है, मंदार पर्वत है, तो बहुत सुंदर सुंदर स्थानों का वर्णन किया गया है, वहां पर वो क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, ब्रज में ऐसे बहुत सारे स्थान वहां पर भी आते हैं कभी कभी। तो गंधर्व जो है चित्ररथ, गंधर्व का एक विशेषता है, बहुत ही सुंदर होते हैं, सभी देवता सुंदर होते हैं वैसे, लेकिन हर एक की अलग अलग सुंदरता होती है, जैसे कि हम देखते हैं अमेरिकन लोग अलग सुंदर दिखते हैं, रशियन लोग अलग सुंदर दिखते हैं, ये तो पृथ्वी के लोग हैं, लेकिन देवता लोग जो है उनका सौंदर्य इतना वर्णन किया गया है, एक तो उनके शरीर में कोई मलमूत्र नहीं होता है, कोई स्वेद नहीं होता है, कोई कान से मल या आंखों से मल या मुंह से बदबू नहीं निकलती, और कोई मलमूत्र निकलता नहीं, कोई उसमें क्या कहते हैं उसको किडनीज और शायद रेक्टम और कुछ होगा नहीं उसके अंदर, उनके लोगों में कोई नाले नहीं होते, गटर्स, कोई बदबू नहीं होती, उनके यहां पर जो फूल खिलते हैं वो कभी मुरझाते नहीं, खाली खिलते हैं बस, इसलिए जब चाहे जब भी कोई अच्छा कार्य होता है पृथ्वी पर वो फूल वर्षा करते हैं, इतना स्टॉक है उनके पास। अर्जुन को भी ऐसे ही अर्जुन को भी ऐसी माला इंद्र ने पहनाई थी, कमल दलों की, नील कमलों की माला, विजय माला, हाँ, युद्ध करने के पहले महाभारत के। ऐसा सुंदर वातावरण है वहां। राधानाथ जी महाराज ने एक बार बीरा रोड के प्रवचन में कहा था कि हम अगर समझो ऐसे ही इसी अवस्था में उनके बीच में हमको रखा जाएगा, समझो ऐसे सोचो कि हम अभी यहाँ बैठे हैं इस अवस्था में, इतनी काम वासना सब कुछ हमारे अंदर है, और इसी अवस्था में अगर हमको डायरेक्ट उनके बीच में रखा गया देवताओं के बीच में, तो हम लोग काम वासना के प्रकोप से मर जाएंगे, ऑन द स्पॉट हमारी मृत्यु हो जाएगी। इतना भयंकर काम हमारे शरीर में उद्दीप्त होगा कि हमारी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी, इतना भयंकर काम उत्पन्न होगा। तो ये सभी देवती देवी देवताओं के शरीर से एक एक कोष तक सुगंध बहते रहता है, सुगंध एक एक व्यक्ति का एक कोष परिघ में सुगंध फैला रहता है, ऐसे सभी लोगों का होता है। तो कितना मिक्सचर का सुगंध होकर सब जगह वातावरण में फैला होगा। इस प्रकार का ऐश्वर्य सब तो साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन सब भौतिक है, याद रखना इस बात, सब नश्वर है, सब समाप्त होने वाला है, काल के प्रभाव से सब नष्ट होने वाला है। तो इससे आकर्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। अद्यंत मंत्र कौमते या न ते शूरमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है चाहे पृथ्वी का हो, पाताल का हो, नरक का हो, स्वर्ग का हो, उसको कभी भी जिस खुशी की शुरुआत है और जिस खुशी का अंत है ऐसी खुशी में रुचि नहीं लेना चाहिए, भगवान ने अर्जुन को बताया। तो ऐसे चित्ररथ जो बहुत युवा अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में, बहुत ही भौतिक दृष्टि से आकर्षक अवस्था में अपने अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे, जल क्रीड़ा कर रहे, और एक स्त्री जो ऋषि पत्नी है वहां पर जल भरने जा रही है। जब जल भर रही है तो उसको दिखाई पड़ता है कि अरे इतना सुंदर आनंद लिया जा रहा है, सब लोग आनंद ले रहे, भोग ले रहे। तो कुछ क्षण के लिए उसके मन में उस चित्ररथ गंधर्व के प्रति, गंधर्व राज के प्रति कुछ ऐसा विचार आता है कि कुछ समय के लिए मैं उसका संग क्यों न करूं, ऐसे उसको मोह होता है। कुछ समय के लिए कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती है, केवल मन से ऐसा विचार आता है कि अरे कितना सुंदर व्यक्ति, कितना सुंदर पुरुष है, उसके प्रति थोड़ी सी काम भावना उसके मन में जागरूक होती है और कुछ समय उस प्रभाव में बीत जाता है। वो भूल जाती है कि वो कौन है, किसकी पत्नी है, क्या करने आई है, क्या अवस्था है उसकी, वो दूसरा व्यक्ति कौन है, सब भूल जाकर उसके मन में जो विषय है उसका, जो विषय भोग की वस्तु है, वो कुछ समय के लिए चित्ररथ के प्रति काम भावना उत्पन्न होगी। और वो समय, जिस समय बहुत जरूरी था उसके लिए, जो समय था उसके पति वहां पर यज्ञ कर रहे थे और उसके बीच में ये जल वहां पहुंचना जरूरी था, तो भूल गए उसको और उस भावना में मशगूल हो गए, मग्न हो गए। और कुछ देर बाद उसको होश आया, अरे समय बीत रहा है, पति मेरे इंतजार करते हुए, तुरंत अपने आप को होश में लाती है और भाग जाती है। लेकिन जान लेती है कि वो समय बीत चुका है, जो समय के पहले मुझे घड़े में गंगा जल लेकर वहां पहुंचना था वो समय बीत चुका है, अब मेरे पति क्रुद्ध होंगे, शायद मुझे शाप देंगे। इस भावना से पश्चातापित होकर वो पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, जल का पात्र वहां अर्पण करती है। अभी कितनी सिंपल चीज है, अरे आज के जमाने अगर आप सोचेंगे इसी सिचुएशन को, अरे क्या है इसमें, क्या है, व्हाट इज द बिग थिंग। लेकिन ये घटना आज के जमाने की नहीं है, ये घटना त्रेता युग के पहले की है शायद, क्योंकि परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो प्रभु रामचंद्र के पहले हुआ था शायद, इज दैट राइट, एम आई राइट, क्योंकि रामचंद्र जी के समय वो पहले से थे वहां पर, रामचंद्र जी बालक थे जब उसने सीता का स्वयंवर जीता था, तभी ये बड़ी उम्र के थे और पहले से ही वहां पर थे और वो महिंद्रा पर्वत से वहां पर आकर चैलेंज करते हैं। तो त्रेता युग के पहले से घटना तो है ही, ये तो परशुराम जी के बालेपन की कथा है जब उनके माता पिता थे और वो कथा चल रही है। तो उस समय में मन से भी जो पाप हुआ करता था वो भी गिनती में आया करता था और उसका भी फल मिलता था। अगर आज आपको ये हम लोगों को ये लगाया जाए कि मन से किए हुए पापों की लिस्ट बनाई और वो एप्लीकेबल होगा, हाँ, हम लोग तो ऐसे बार बार मरेंगे, अनंत बार हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग में ये मन के पाप जो है, मन के द्वारा मन में होने वाले पाप जो है वो माफ है। कलयुग के अंदर बहुत सारे वरदान है। एक्चुअली एक वरदान ये है कि मन के द्वारा जितने भी हम पाप करते हैं वो माफ। क्योंकि कलयुग लोगों की अवस्था ही इतनी भयंकर है, ना अच्छे गुण है, ना संग है, ना भाग्य अच्छा है, हमेशा झगड़े में लिप्त रहते हैं, आयुष्य छोटा होता है, स्फूर्ति नहीं होती है, कोई सद्गुण नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई हमेशा आलस्य में पड़े रहते हैं, अजगर की तरह ऑलवेज लेजी, हर चीज करने के लिए। सबसे उत्साही व्यक्ति भी देवताओं की दृष्टि से बहुत आलसी रहते हैं। इतना आलस का यहां पर प्रभाव है गरीब में। तो ऐसी अवस्था में अगर भगवान वो मन के पापों को भी अगर समझेंगे कि आपको लेना है, इसको विचार में लेना है, तो क्या अवस्था होगी हमारी, क्या स्थिति होगी हमारी, कहां जाएंगे हम, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो माफ कर दिया गया। यहां पर मन में कुछ समय के लिए किए गए पाप के बारे में चर्चा हो रही है। वो भी कुछ किया नहीं उसने, लेकिन एक बात है, लेकिन मन में हम जब तक कुछ पाप के बारे में सोचते हैं तब तक ठीक है, माफी है सब कुछ। लेकिन कहा गया है ना, वॉच योर थॉट्स, मन में क्या विचार चल रहा है ध्यान पूर्वक देखना उसके ऊपर, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसकी वाणी में रूपांतर होगा, उसके बारे में आप बोलेंगे। मैं अगर जलेबी खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है तो आप बोलेंगे किसी को, तो चलो जलेबी खाने को, कहाँ जलेबी अच्छी मिलती है, कुछ इंक्वायरी करेंगे। और अगर उसको भी ध्यान में रखेंगे नहीं तो जाएंगे और खाएंगे उसको, हो सकता है कि खुले में खाया इसलिए आपको डस्ट लग सकती है। मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत भयंकर एग्जाम्पल दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में अनंत विचार आ रहे थे, और अगर विचारों को हमने उसी पर नहीं रोका तो फिर वाणी में उसका रूपांतर होता है और कृति में रूपांतर होता है, और कृति के बाद में उसका आदत लग जाती है, और आदत का रूपांतर चरित्र में होता है। तो सबकी शुरुआत चरित्र का जो स्खलन होता है, पतन होता है, वो सब मन के विचारों से उसका आरंभ होता है। इसलिए मन के विचारों को माफी है, लेकिन मन के विचार आगे बढ़े तो माफी नहीं है। उसका इलाज हो जाता है फिर भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से। इसलिए मन को अगर काबू में रखना है तो कलयुग में मंत्र दिया गया है, महामंत्र, जो मन को विकारों से मुक्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जैसे ही वहां पर आती है, जमदग्नि तो त्रिकालदर्शी साधु है, तुरंत देखते हैं कि हमारी पत्नी का जो चरित्र है वो भी दूषित हो चुका है, उसके पतिव्रत में भंग हो चुका है। पुराने जमाने में कितना उच्च दर्जा था, व्हाट अ हाई स्टैंडर्ड डे वॉज। मन में किसी विचार पुरुष का एक क्षण के लिए भी विचार आया, विवाह के पहले भी, तो उसको दूषित मानते थे। फिर उसको उसी व्यक्ति का शादी करना है जिसका विचार उसके मन में आया था, ऐसे व्यक्ति के साथ और कोई व्यक्ति शादी नहीं करता था। जैसे अंबा का कथा आप जानते हैं, अंबा ने शाल्व को पहले वर लिया था, भीष्मदेव ने उनको हाथ पकड़ के छीन कर रथ पे रखकर कुरु राज्य में ले गए वो, तब पता चला कि किसी और को हृदय दे चुकी थी वो, तो वापस भेज दिया गया। पहले कहा कि अभी तुमको शादी करनी पड़ेगी, फिर तुमने हमको छुआ है, बोला मैं नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी व्रत लिया है, तो उसको शाल्व राज में भेज देती है। शाल्व कहता है कि नहीं, तुम्हें अभी किसी और पुरुष ने छू लिया है, मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकता हूं। तो शाल्व भी मना कर रहे हैं, भीष्मदेव भी मना कर रहे हैं, कितना बड़ा आगे परिणाम होता है उसका। वो तपस्या करती है और अगले जन्म में शिखंडी बनकर आती है और भीष्मदेव के वध का कारण बन जाती है, ऐसा स्टैंडर्ड था उसका। तो फिर वो जमदग्नि कहते हैं इसका वध किया जाए तुरंत। हमको लगे इतना कोई, अगर आज के लोग जमाने का व्यक्ति पड़ेगा जो भक्त नहीं है, क्या भागवत में क्या है, व्हाट इज दिस। दो मिनट विचार मन में आए तो पिताजी कह रहे हैं वध करो उसका, बहुत भयंकर शास्त्र है। लेकिन वो क्या उसमें बैकग्राउंड था उसका, किस जमाने की बात कर रहे हैं, किस जमाने का सीन चल रहा है, उस पर डिपेंड है। अभी आजकल के जमाने में अगर बालक अगर सिगरेट पीता है स्कूल में तो उसको काउंसलिंग करते हैं, बेटा सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। हमारे जमाने में अगर कोई पता चला तो उसको तुरंत स्कूल से रजिस्ट्रेट कर देते, तुरंत इमीडिएटली आउट ऑफ द स्कूल। आज बोलेंगे नहीं, कम से कम तो वो ड्रग तो नहीं ले रहा ना, इज नॉट टेकिंग ड्रग्स, तो इट्स ऑल राइट, यू कैन काउंसलिंग, इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई व्यक्ति बहुत लड़कियों के साथ में अफेयर कर रहा है, बोले कोई बात नहीं, यू कैन काउंसलिंग, कम से कम वो सबल की संभोग तो नहीं कर रहा है, इज नॉट अ होमोसेक्सुअल, इज नॉट गे। तो हमारे जमाने बचपन से आज तक केवल 25-30 साल रहा, 40 ईयर बीत गए होंगे, लेकिन कितना अंतर आ गया है समाज के नीति नियमों में, रूल्स रेगुलेशन में, पनिशमेंट में, हाँ कितना विचार में बदल आ गया है, क्योंकि समाज पतित होते जा रहा है, इसलिए नियम भी बदलते जा रहे हैं। हम देखते हैं अरे कम से कम तो ड्रग तो ले नहीं रहा है, सिगरेट पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई पी लो कोई बात नहीं, दिन में 2 ही पी लो, 50 मत पियो। ऐसे माता पिता कहते हैं, मेरे फ्रेंड के माता पिता अपने बच्चे को कहते थे कि एक ना एक तो व्यसन होना ही चाहिए, मतलब एक हर एक व्यक्ति को एक व्यसन होने में कोई खराबी नहीं, पीने दो उसको प्रॉब्लम नहीं। ऐसे मेरे सामने, मैं जब बालक था तो मेरे फ्रेंड के पिताजी मेरे सामने कह रहे कि ही स्मोकिंग सिगरेट तो नो प्रॉब्लम, ही कैन स्मोक, क्योंकि खुद पी रहे हैं सिगरेट, तो क्या बच्चे को बताएंगे। फिर आगे जाकर वो बालक ने सिगरेट से आगे चरस, चरस से आगे ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर आगे हीरोइन करके 35 साल के अंदर जीवन खत्म हो गया उसका। ये हमारे जीवन की हकीकत है, हमारे सामने घटित गया। तो उस तरह से इस संदर्भ क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। संदर्भ यह है कि हम त्रेता युग के स्टैंडर्ड दर्जे की बात कर रहे हैं, तो जमदग्नि ने आदेश देते हैं, उनके बाकी पुत्र जो है मना कर देते हैं, हम माता का वध नहीं कर सकते। तो परशुराम को सबसे छोटे बालक को बुलाते हैं, वध करो अपनी माता का और भाइयों का वध करो, तो पिता की अवज्ञा कर रहे हैं। उन जमाने में जब पिता शुद्ध भक्त हुआ करते थे, वो गुरु के समान थे, पत्नी के लिए भी गुरु है वो और बच्चों के लिए भी गुरु समान है। तो गुरु की अवज्ञा हो रही है तो गुरु की अवज्ञा करने वाले को तो तुरंत मारना चाहिए। परशुराम जी प्रभावज्ञ, अपने पिता का प्रभाव जानते थे वो, कि इनका क्या प्रभाव है। अरे शंतनु ने भी जब सप्तविधि के लिए अभिलाषा की थी, तब बोलते अरे क्या विष्णुदेव ने अपने पिता के भोग के लिए खुद ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और पिताजी के लिए बोलो आप ले लो, आप शादी करो आनंद ले लो, सही नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन शंतनु दास ऐसे नाम देते हैं लोगों को बहुत, अगर वो शुद्ध भक्त नहीं तो नाम क्यों देंगे दीक्षा के बाद शंतनु दास। शंतनु के अंदर इतना बल था कि जब उसने पुत्र ने उनको संतुष्ट किया इस प्रकार से, तो उन्होंने इच्छा मरण का व्रत वर दे दिया उसको। अगर कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो ऐसे भोगी है तो क्या वर दे सकता है क्या, इच्छा मरणी बन जाओ और जब इच्छा होगी तब मरोगे, तब तक जीवित रहोगे। तो वैसे जमदग्नि यहां पर आदेश दे रहे हैं, वो जानते थे पिताजी का क्या प्रभाव है, और ये भी जानते थे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मैं अगर इनकी आज्ञा पालन करूंगा मुझ प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले कि बेटा वर मांगो, तो मैं वर मांगूंगा कि मेरे माता पिता को जीवित कर दो, माता और भाइयों को जीवित कर दो, तो सब ठीक हो जाएगा। और नहीं वर मानूंगा इनकी आज्ञा, शायद मुझे साफ दे सकते हैं, मुझे भी कुछ और हानि हो सकती है। ये भी उस जमाने का संदर्भ का बुद्धि है, रिलेटिव इंटेलिजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। आज के जमाने में क्या बोलेंगे, उन पिताजी बोल रहे हैं कि आप सिगरेट पी सकते हो, एक व्यसन रखना ही चाहिए। ऐसे पिताजी को अगर इच्छा तृप्ति करेंगे क्या वरदान देंगे आपको, चलो आपको होटल लेके जाऊंगा और नॉनवेज की पार्टी, इतना बोल सकते हैं मैक्सिमम। और क्या आगे बोलेंगे आपको कि आप अभी बहुत बुद्धिमान हो जाओगे, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और आप विद्वान हो जाएंगे और आपको कीर्ति प्राप्त होगी, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। इतने पति सब यहाँ के माता पिता सब हो चुके हैं गरीब के। तो जमदग्नि के आदेश के अनुसार तुरंत वो अपनी माता को वध करते, भाइयों को भी मार डालते। और फिर पिता कहते हैं तथास्तु, क्या वर मांगना है बोलो। बोले मेरी माता को भाइयों को जिंदा कर दो, तो जिंदा हो जाते। तो ये ऐसा सुंदर वर्णन इसमें आता है। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर कितना हाई स्टैंडर्ड है, और कलयुग में हम इसको पढ़ रहे हैं, हाँ कितने युग बीतने के बाद पढ़ रहे हैं, तो लोग बोलेंगे क्या रिलेवेंस है इसका आज के जमाने में। रिलेवेंस क्यों नहीं है, भागवत का हर एक शब्द जो है वो जीवन काल में हर युग में हर युग के काल में भी रिलेवेंट है, मतलब समर्पक है। सत्युग की कथा भी कलयुग के एंड में भी समर्पक, जब तक मनुष्य है और मनुष्य जीवन का काल है, वो चाहे कलयुग का हो, सत्ययुग का हो, त्रेतायुग का हो, द्वापर का हो, या किसी देवता का देवता लोक का काल हो, या किसी ब्रह्मलोक के वासी का ब्रह्मलोक का काल हो, या किसी भी व्यक्ति का हो, जहां तक कि वैकुंठ लोक का भी लोगों का काल हो, तब भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट साइंस है, दिस इज परम ज्ञान। परम ज्ञान है, परम ज्ञान का मतलब किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर ये समर्पक है। इसको इस तरह से आपको देखना चाहिए। तो क्या समस्या होगी रेणुका को? रेणुका न जानते हुए, न अपेक्षा करते हुए ऐसे एक वातावरण में पहुंची जिसकी उसको पहले से ज्ञान नहीं था। सुना प्रिपेयर कि अब मैं जाऊंगी तो यहां पर ऐसा वातावरण होगा, तो मैं कैसे अपने आपको बचाऊंगी इससे, ऐसा विचार करके नहीं गई थी। उसके ऊपर ये वातावरण अचानक प्रकट हो गया उसके लिए, और उसका परिणाम क्या था? वो कामुक वातावरण था, रजोगुण से भरा हुआ वातावरण था। वहां पर शरीर का वो आनंद लिया जा रहा था, स्त्री पुरुष के बीच में आनंद लिया जा रहा था, और वो क्योंकि तैयार नहीं थी, मतलब शी वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फेस सच अ कंडीशन, तो शी वाज़ अफेक्टेड इमीडिएटली। तो वातावरण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम कभी भी ये बोल नहीं सकते कि अरे हम तो भक्त हो गए, अभी तो हमने इतने साल जप किया है, अभी तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो कहीं भी जा सकते, कुछ नहीं होगा। ये सोचना बहुत गलत है। जीव जो है वो पतनशील है, वैल्यूबल, और वो परी शुद्ध भक्त भी होगा तो भी उसको बच के रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण, भगवान कहते हैं ना, दैवी ये श्री गुणमयी मम माया दुराध्याय, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई जो ये माया है बहुत ही प्रभावशाली, दुराध्याया, इसको कोई भी साधारण व्यक्ति काट नहीं सकता, कोई भी जीव अपनी परिपूर्ण अवस्था में भी माया की शक्ति को काट नहीं सकता, और ये सब जगह पर प्रभाव दिखाती है। हाँ, जहां भगवान का धाम है वहां पर भी प्रभाव दिखाते हैं, जितना भगवान वहां प्रकट है उतना उनकी माया भी वहां प्रकट है, क्योंकि जहां पर कृष्ण थे वहीं कंस था, वहीं प्रलंबासुर था, वहीं पर आते थे ना सब लोग। तो जितना आतंक अभी हो रहा है उससे हजारों करोड़ों गुना आतंक तभी हुआ करता था इनके होने से, और भगवान भी वहां पहुंचते हैं, कृष्ण है, बलराम है, सब लोग हैं, गौलोक वृंदावन का प्रकट हो गया है, हम वृंदावन में सभी सब भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, फिर भी कितना आतंक है। अरे औरतों का आकर्षण हो रहा है, जब परिश्रम आता है, सब भूखियों जो गर्भवती थी उनका गर्भपात हो गया, पेड़ों से लिपट रही है, डर रही है, आक्रोश कर रही है, हमने ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान होते हुए सब हो सकता है? भगवान होते हुए इंदिरा वर्षा कर सकता है? हाउ इज पॉसिबल? ये माया है भगवान, तो भगवान की इच्छा से काम करती है, उसके प्रभाव से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। केवल उसके प्रभाव से मुक्त होना है तो कृष्ण भावना, यही एक उसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कृष्ण भावना से ही इसके प्रभाव को हम काट सकते हैं, और वो भी हमारा बल नहीं है, वो कृष्ण नाम कृष्ण भावना का बल है, वो जिसको हम खाली लेते हैं, अपनाते हैं। जब अपनाते हैं तो एक प्रकार का जो है ना प्रोटेक्शन, सुरक्षा उत्पन्न होती है। जैसे अभी हम मेडिकल लोग हैं सब लोग, हम कहते हैं ना एपिडेमिक, यानी कि साथ साथ ही सा रोग, एपिडेमिक होती है ना, कभी देवी होती है, कभी टाइफॉइड होता है, कभी जॉन्डिस का होता है, कभी कुछ कुछ होता है, डेंगू फीवर होता है, और हम लोग उसी एरिया में रहते हैं। तो मेडिकल साइंस में क्या होता है, वैक्सीनेशन, सभी रोगों में नहीं मिलता है आजकल, लेकिन कुछ कुछ रोगों में होता है, टाइफॉइड होता है, कॉलरा का वैक्सीन होता है, स्मॉल पॉक्स देवी का भी होता है। तो वो वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है, अगर हम वैक्सीन लेने के बाद में उस रोग के इलाके में भी गए और आपको मच्छर भी काट रहे हैं और हमको पानी भी पी रहे हैं, तो भी हमको वो रोग नहीं होता है, क्योंकि शरीर में आपने ऐसा एक द्रव्य डाल के रखा है जिसके प्रभाव से रोग के वातावरण में होने पर भी उस रोग का असर परिणाम हमारे शरीर पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम अभी वृंदावन में गए, हमने भी जल लिया, हमको कुछ नहीं हुआ, और हमको भी फोन आया था कल की डॉक्टर साहब की पत्नी को टाइफाइड हो गया दोबारा, वो जल हमने भी पिया, उन्होंने भी पिया, लेकिन उनको टाइफाइड हो गया, हमको नहीं, हमारे शरीर में कोई ऐसी व्यवस्था है तो प्रतिकार कर दिया उसको, शरीर में नहीं होगी, टाइफाइड हो गया। लेकिन वैक्सीन अगर लिया होता, वैक्सीन अगर शरीर में होता तो कमजोर होने पर भी वो टाइफाइड नहीं हुआ होता। इसका मतलब क्या हुआ, एक वैक्सीन ऐसे नाम की, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, टीका, टीका टीका देना, वो ऐसे एक वस्तु है जो रोग के वातावरण में हम लोग होने पर भी हमको रोग से बचाती है, रोग का आघात होने पर भी हमको रोग से बचाती है। तो हम सब लोग इस भाव रूप इस विश्व में ऐसे वातावरण में है कि भवरोग सब पर हावी है, हम और कोई बच नहीं सकता है उसे, लेकिन अगर भगवान की भावना को स्वीकार करेंगे तो हम बच सकते हैं, लेकिन उसको निरंतर लेना चाहिए। हाँ, 4 घंटे लिया और 6 घंटे फ्री रहे तो 6 घंटे तुरंत माया अटैक कर दिया। इतना प्रभाव है दुनिया का, इसलिए क्या करते हैं भगवान, क्या वर्णन किया है भक्तों का, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढव्रता। मेरे भक्त वो है जो निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते, मेरा निरंतर ध्यान करते रहते, मेरे बारे में सोचते रहते हैं और वो दृढ़व्रता रहते हैं, निश्चय रहते हैं, कभी भी निश्चय को कमजोर होने देते नहीं है कि हमको इस भौतिक दुनिया के प्रभाव में नहीं आना है, हमको हमेशा भगवान के ही विचार में रहना है। सततम कीर्तयन्तु माम, तो हमें देखना यह है कि हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारा समय जो है ना वो ऐसा अनप्रोटेक्टेड है, असुरक्षित रूप से हमने रखा हुआ है, और खास करके जब हम अपेक्षा नहीं करते हैं वैसे ही समय पर वो हम पर अटैक करता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं काम वासना से बचे, क्रोध से बचे, लेकिन ऐसे सडनली हम लोग ऐसे स्थिति में पहुंचते हैं कि हमको तुरंत गुस्सा आता है या झगड़ा होता है, हम अपने काबू को जाते हैं, नियंत्रण को जाते हैं, कुछ कर बैठते हैं, फिर बचता थे, अरे क्या हुआ था, अरे उसने जब नहीं किया था, ऐसे निकल गया था, झट से गुस्सा आ गया, ऐसा आना नहीं चाहिए था। इसलिए हमारा जो सुरक्षा कवच है वो हमको हमेशा बनाए रखना चाहिए। हो सकता है रेणुका अगर किसी सहेली को लेकर गई होती वहां पर तो शायद वो इससे बचती, इधर राइट, किसी सहेली को लेकर जाती थी पानी भरने के साथ में, तो उसके संग से वो उसको कहती, अरे दीदी क्या कर रही हो, वहां पिताजी पति देव इंतजार कर रहे हैं, ये इसमें लिप्त होना हमारा काम नहीं है, ये गलत चीज है, उसको बचाती थी। अगर वो कुछ कहती भी नहीं थी, केवल उसके होने से भी, उसके वहां साथ में होने से भी वो गलत विचार वहीं रुक जाता। जैसे हम लोग कभी ट्रेन में सफर करते हैं ना, और ट्रेन में कुछ लोग ऐसे टीवी लगा देते हैं ना, वो कंप्यूटर आजकल मिलता है सब जगह, टीवी सब जगह, अभी आजकल एक एक कंपार्टमेंट सब जगह टीवी स्क्रीन पे पिक्चर चलते रहते हैं, जब अकेले हैं तो बार बार देखेंगे उसे, क्या मूवी चल रहा है, पुराना है कि नया है, एक्शन है कि थ्रिल है, हमने भी देखा था कोई पुराना पिक्चर, उसमें तो नहीं है, अरे हाँ वही पिक्चर है, ऐसा हमारे रहेगा। लेकिन सब साथ में कोई हमारा भक्त यात्री ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब लोग उसे देखेंगे नहीं कि भक्त हमको देख रहे हैं, हाँ वो बोले अरे अच्छा है प्रभु जी, हाँ इतना प्रवचन देते हैं और अभी खुद कितना चाव से देख रहे हैं तो ये सोचकर ही हम नहीं देखेंगे उधर। तो एक भक्त का संग में होना कितना प्रभावशाली होता है, वो चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बालक भी होगा ना, बालक उतना ज्ञान भी नहीं, उसकी बुद्धि भी नहीं, लेकिन वो भी संग होगा ना तो भी, अगर भक्त होगा बालक जब वो उतना कुछ जब करता होगा परिवार से होगा तो भी आप बचेंगे उसके संग से। आप सोचेंगे अगर मैं देखूंगा तो बालक भी देखेगा ना, कितना बुरा संस्कार होगा उसके, मुझे नहीं देखना चाहिए। लेकिन अकेले रहेंगे तो शायद देखेंगे, अकेले रहेंगे तो सुंदर सिंह को बार बार देखते रहेंगे ट्रेन के अंदर, जो को यात्री है ना हमारे, एक भक्त रहेंगे तो नहीं देखेंगे। हो सकता है हमको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भक्त नहीं रहेंगे तो हम ट्रेन में शायद ऑर्डर करेंगे और खाएंगे, अरे कौन देख रहे हैं आपको, प्रॉब्लम, अरे हम अच्छी तरह से उसको अर्पण करेंगे भगवान को और खाएंगे। एक भक्त का संग होने से हम अनंत पापों से, जो आपको पता भी चलता नहीं, बच जाते हैं, अनंत संकटों से बच जाते हैं। और रेणुका की क्या महानता है इसमें, वो समझ गए अरे मैंने अपराध किया, और पश्चाताप की भावना से लेकर वो पति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर, ऐसा आर्गुमेंट नहीं किया उसने तो क्या हुआ, मैंने कुछ किया क्या, अरे मन में मेरे विचार आया तो क्या हुआ, इतना क्या होता है उसमें, ऐसे आज की स्त्रियां बोलेंगी, आज के प्रभु जी बोलेंगे, इतना मैंने क्या पाप किया, बाकी लोग इतना पाप करते रहते, हमने तो थोड़ा सा गलती हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा पैर निकल गया तो क्या बड़ी बात है, ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन पाप छोटा हो या बड़ा हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, पाप पाप ही होता है और इसका परिणाम भी होता है, और वो कलयुग में भी हम बच सकते नहीं है, खाली वो मन के पाप की माफी है इसलिए बच सकते हैं, लेकिन उसके आगे के पाप से हम बच नहीं सकते। सबसे सेंट्रल पॉइंट जो है वो भक्तों का संग है, भक्तों का संग रहेगा तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखो हमारा कितना विशेष भाग्य है, 99% भक्त जो हैं उनको दुर्भाग्यवश बाहर काम करना पड़ता है, जो भक्त लोग नहीं है, शराबी है, जो जुआरी है, जो व्यभिचारी है, वो कपटी है मन से, ऐसे लोगों के बीच में काम करना पड़ता है परिवार को चलाने के लिए। तो आप 2 घंटा जब करेंगे, 1 घंटा मंदिर जाएंगे, संडे को 4 घंटा मंदिर में जाएंगे, महीना साल में 1 बार 15 दिन यात्रा में जाएंगे, काफी नहीं है। बाकी सारा समय अभक्तों के साथ रहना पड़ता है और उसका परिणाम भी होता है हमारे ऊपर। कितना भी हम लोग वैक्सीन लेंगे तो हम इतने शुद्ध नहीं है कि उसके प्रभाव से बचें। और यहां पर कैसा भाग्य है, घर में हमारे भक्त वातावरण है, भक्त लोग घर में रहते हैं, भगवान की पूजा हो रही है, वहां जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, घर में तो एटलीस्ट प्रोटेक्टेड है। यहां पर काम पे आते हैं तो वही वातावरण है, यहां पर टेलीविजन नहीं है, कोई गलत लोग नहीं है, सब नियम पालन होते हैं, प्रसाद मिलता है, दर्शन भगवान का होता है, भक्तों का होता है, भगवान के चित्रपट का होता है, प्रभुपाद जी का होता है, आरती सुनाई पड़ती है, गौरवरम सुनाई पड़ता है, हाँ उत्सव के अनुसार सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, वहां पर भी प्रोटेक्शन है। यहां पर हम लोग आवृत्त है, सुरक्षा कवच के अंदर बचे हुए हैं, कितना भाग्य है हमारा। हमको हर रोज प्रभुपाद के सामने खड़े होकर धन्यवाद करना चाहिए कि हमारा कितना भाग्य है। पता नहीं, हम तो कुछ तपस्या वगैरह कुछ किया नहीं, लेकिन हमको आपने कितना बड़ा भाग्य दिया है कि निरंतर भक्तों के कवच में, आपकी कृपा के कवच में बनाए रखा है। सच्चा फॉर्चून है सर। बाहर के लोग, भक्त लोग जो होते हैं वो बाहर के काम करने का, संघ का बुरा असर को निकालने के लिए हफ्ते में 1 बार जाके मंदिर में जाके बैठते हैं, वहां सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, उसका असर निकालने के लिए कुछ सेवा भी करते हैं। हमारा यहाँ का जीवन ही पूर्ण सेवा है, निरंतर संघ में रहते हैं। प्रश्न केवल मन का है, इसमें रहकर भी हमारा मन अगर पैसे के पीछे भाग रहा है कि पैसे के लिए हमको आना है यहाँ पर, तो फिर हम कवच के बाहर हैं। सी हाउ सूक्ष्म कितनी बात है ये। इस ऐसे वातावरण में रहकर भी अगर हमको केवल हमको प्रमोशन कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस कैसे बढ़ेगा, पगार कैसे बढ़ेगा, और वो मेरे आगे क्यों जा रहा है, अगर ये विचार में रहेंगे तो हम सुरक्षा कवच से बाहर हो गए। और ये वातावरण में रहकर देखेंगे कि जो भी है भगवान ने सेवा में रखा है, थैंक यू वेरी मच माय लॉर्ड, मैं इसके योग्य नहीं हूं, आपने मुझे रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर जरा सा मैंने कुछ गुस्सा के किया तो एक समय बाहर जाऊंगा तो और कहीं नौकरी करूंगा तो पता नहीं कितने कामी लोगों के साथ में, कितने पापी लोगों के साथ में काम करना होगा। हमने किया है ना, विफल सेवन कृपण दुर्जन, ये हमारे जीवन का हकीकत है। हमने सऊदी अरब में 2 साल सेवा किया, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है वो, विफल सेवन कृपण दुर्जन। जो लोग मांसाहारी, गो मांसाहारी, पापी, शराबी, जो लोग केवल भौतिकता में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के लिए सेवा किया है परिवार को पालन करने के लिए। पता है ना हमको कितना बुरा असर होता है उसका, कितना मन में घुटन होती है, कितना मन के अहंकार को दबाना पड़ता है, क्रश होता है हमारा अहंकार। क्या क्या बताऊंगा, बताऊंगा बैठ कर, कैसे कैसे अपमान किया गया, कैसे हमने उस अपमान का विष पिया, क्या करें, लाचार है, असहाय है, हेल्पलेस कंडीशन है, ऐसे सब लोग हैं भौतिक दुनिया में असहाय अवस्था में। और यहां पर कितना भी भक्त के साथ हमारा वाद विवाद हुआ, हमको इसके साथ पटती नहीं, हमारा कलीग मैनेजर जो है हमारा पटता नहीं है, हमारा जूनियर हमको अच्छा लगता नहीं, कितना भी कुछ भी खराब होगा ना, उतना नहीं होगा जितना भार होता है, गारंटी यू दिस। इसलिए मंदिर में भी नियम बनाया है, यहां पर भी होना चाहिए कि बाहर कुछ साल काम करके भक्ति विधान में और मंदिर में ब्रह्मचारी बनने के लिए जाना चाहिए, ताकि पता चलेगा कि बाहर कितनी लातें पड़ती हैं, सामने से, पीछे से, साइड से, फ्रंट से, आंखें बंद करके, आंखें खोल के केवल लत्ता प्रहार होते रहता है उसका। एक बार चख लिया ना तो फिर यहां पर आके आपको दो अगर कोई खड़े बोल सुनाएंगे ना, बोलेंगे ये तो कोमल फूल की तरह है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बार बार आपको अनुभव होता रहेगा अगर बाहर की लत्ता प्रहार का किसने अनुभव किया होगा तो। और धन्यवाद की भावना मन में बनी रहेगी, थैंक यू वेरी मच, हम बहुत ऋणी है, कृतज्ञ है इस वातावरण के, यहाँ पर हमको सम्मान के साथ में कुछ बताया जा रहा है। अगर कुछ डांट भी पड़ रही है तो सम्मान के साथ में कि भक्त है, इसको अच्छी तरह से बोलना चाहिए, गलती भी कर रहा है। तो ये वातावरण जो है ये निर्माण करना और बनाए रखना बहुत जरूरी है। निर्माण किया हुआ है तो भी एक एफर्ट है उसके पीछे, और बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट है, क्योंकि वो विष्णु स्वयं अपने हाथ में लेते हैं मेंटेनेंस। है ना, मुझे मेंटेनेंस कैसा लगता है, बिल्डिंग बना था बहुत आसान है, चलो किचन बना दो, 1 महीने का खड़ा कर दिया, लेकिन किचन को चलाना है उसी उसी तरह से, सफाई कर दिया एक बार फर्स्ट क्लास महा क्लीनिंग, लेकिन साल भर सफाई को बनाए रखना है, कितना डिफिकल्ट है कि वर्ल्ड जो है वो हमेशा डस्ट कचरा डालते रहते हैं उसमें प्रकृति की तरफ से, रेगुलर साफ करना पड़ता। वातावरण निर्मित जो है बहुत जरूरी है। ये अनभिज्ञ होते हुए न जानते हुए ऐसे वातावरण में चली गई तो तुरंत प्रभाव हो गया उसके ऊपर और मन में विचार गलत आ गया, उसका दंड मिला। हमको सीखना चाहिए अपने आप को किसी भी वातावरण में डालने के पहले सोच समझ कर जाना चाहिए। बी ऑलवेज अवेयर कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ट्रेन से प्रवास करने वाले हैं मन की तैयारी करो कि 8 घंटा 14 घंटा जो है हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहने वाले हैं जो सब कामी क्रोधी और लोभी रहने वाले हैं, तो लेके जाओ साथ में लेक्चर लेके जाओ, जपमाला लेके जाओ और किताब पढ़ो और अपने आप को ऐसे भावना में रखो 17 घंटा कि उनका प्रभाव हम पर ना हो जाए। तो हम लोग बहुत समीप आते हैं उनके ट्रेन में और प्लेन में भी। सुरक्षा कवच को बनाए रखो, कवर योर सेल्फ विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब आपने अपने लिए वातावरण निश्चित किया कि मैं इस वातावरण में रहूंगा चेतना से तो बच जाएंगे। और कलेक्टिवली जो हमारा घर का वातावरण है, हमारे स्कूल का वातावरण है, हमारे हॉस्पिटल का वातावरण है, हमारे डिपार्टमेंट का वातावरण है, वो भक्तिमय रखो। प्रयास करो कम से कम हमारे आसपास के लोग जो है उनको हम भक्तिमय वातावरण का एक उदाहरण उत्पन्न करें अपने उदाहरण से और एक वातावरण निर्मित करें, तो उस वातावरण में हम भी नहीं जो भी काम कर रहे हैं वो तो सब लोग आध्यात्मिक दृष्टि से सुरक्षित रहेंगे। ये प्रभुपाद की हमारे लिए भेंट है। प्रभुपाद जी वी आर ग्रेटफुल टू प्रभुपाद बिकॉज उन्होंने इस वातावरण का कंसेप्ट कम से कम हमको दिया कि ऐसे हो सकता है, दुनिया में कहीं भी ऐसे वातावरण उत्पन्न हो सकता है और आप माया से बच सकते हो। उस दुनिया में जब तक रह रहे हो तब तक इसके प्रभाव से आप मुक्त तो रह सकते हो और अंत में इस प्रभाव की वजह से भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त हो सकते। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है हमको, इसलिए हम अभी भी जीवित हैं। हाँ, नहीं तो पता नहीं दुनिया में हमारा क्या हालत हो सकता। उस दोस्त के पिताजी का कहने से प्रभावित अगर हो चुके होते तो हम भी ब्राउन शुगर लेते, हम भी आज दुनिया में नहीं रहते, पता नहीं कौन से नरक में दंड भुगते हुए अभी होते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एक प्रश्न आपने से कहा तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। उनका प्रश्न यह है कि मन के अपराधों को कलयुग में माफी है, लेकिन मन से जब हम वैष्णव के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। शास्त्र में भी इसको दिया गया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वैष्णवों को देखकर अप्रसन्न होना ये भी वैष्णव अपराध में माना गया। दैट राइट, वैष्णव के बारे में गलत, एक वैष्णव ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा एक विषय है जिसके लिए हमको थोड़ा गहराई से विचार करना पड़ेगा। जैसे उस दिन में बात कर रहा था कि मायापुर धाम में हमारे कोई मित्र भी रहने लगे, हमने कहा मायापुर तो औदार्य धाम है, वहां पर सब माफी है, लेकिन वैष्णव अपराध से नहीं है सर, ध्यान में रखना एक बात है। वैष्णव अपराध सब जगह पर लागू है और मन से भी वो लागू है, क्योंकि अगर वैष्णव को देख के हम मन में कुछ बुरा विचार रखते हैं, बुरी भावना रखते हैं, द्वेष भावना रखते हैं या कोई ऐसे क्रिटिकल यानी कि टीका करते हैं उनके ऊपर या कोई ऐसे टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर, तो वो बहुत भयंकर विष है और उसका भी परिणाम होता है, ऐसे शास्त्र में दिया है। इज दैट राइट? और कोई कमेंट करना चाहेगा इसे?
यू लाइक टू
कमेंट? हाँ,
अगर मेंटली फॉरगिवनेस मांग ले उसी टाइम मावन वालन हो गया तो मेंटली फॉरगिवनेस हो गया तो क्या होगा?
डिफिकल्ट प्रश्न। उसका बेस्ट जो तरीका है शास्त्र में दिया है वो, अगर हमने अपने मन में भी किसका अपराध किया हो, अगर आपने उतनी हिम्मत है तो उस व्यक्ति के पास जाके बोलना चाहिए, सॉरी प्रभु जी आपके बारे में मैंने गलत सोचा और मन में ऐसा विचार मैंने किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए बहुत ईगो को क्रश करना पड़ता है। अगर आपको मन से क्यों अपराध की माफी मांगनी है, हम तो शरीर से किए अपराध की भी माफी मांगने को तैयार करके नहीं है ना। हमने अगर किसी को ऐसा बोल दिया है, कुछ गलत अपने इंद्रियों से कुछ अपराध कर दिया है, फिर भी हम लोग माफी मांगने के लिए बहुत तरसते हैं, मतलब कष्ट होता है। लेकिन ये जो कैसे बताया, मन से अगर आपने किसी का अपराध किया है तो मुझे लगता नहीं कि मन से ही माफी मांगने से उसमें काम हुआ, डोंट थिंक सो। क्योंकि कल कोई तो मैंने इतना सुंदर प्रवचन दिया, कल मॉर्निंग में दिया शायद परसों, प्रायश्चित के बारे में। जब तक मन में वो प्रायश्चित की भावना नहीं होती है तब तक हम माफी के लिए तैयार भी नहीं होते। तो प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए मन में, अगर अपराधी भावना हो गई अरे हमने गलती किया, वो जरूरी है, वो विफल नहीं है, निष्फल नहीं है वो, फिर उसके आगे जाके माफी मांगने का प्रयास भी करना चाहिए। वो नम्र बनना जो है ना, चाहे अपराध किया हो या न भी किया हो, नम्र बनना ये प्रक्रिया ही इतनी प्रभावशाली है कि तुरंत भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेती है। तुरंत कितना भी दुर्गुण हमारे अंदर होंगे अगर हम नम्र बनने का प्रयास कर रहे हैं तो इमीडिएटली इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कृष्ण, तो इसमें नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। रही बात मन में पश्चाताप करने से वो नलीफाई हो जाता है कि नहीं जाता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आई फील फ्रॉम विद इन दैट उधर पुराने होते हैं, मुझे लगता है कि नहीं बुरा होता है। क्योंकि भक्त लोग के प्रति अगर हमारे मन में गलत भावना है और पश्चाताप भी करते हैं, साथ में जाकर माफी नहीं मांगते हैं, तो उसका पूरा जो वो है ना अपराध का निराकरण नहीं होता है उसके। अपराध अपराध को बचाने के लिए अगर अंतर रखना है, मतलब अपराधी भावना इतनी ज्यादा है कि बार बार पास जाने पर अपराध होने की संभावना है, तो अपराध को बचाने के लिए दूर रहना अच्छा है। जब हमारी प्रवृत्ति सुधर जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, फिर दोबारा मिल सकते हैं। बार बार बच्चा जाके जो मट्टी कचरा खाता है तो आप बोलेंगे मट्टी दूर रखो, उसको मट्टी दिखाओ मत उसको, ताकि मट्टी खाते रहेगा देखेगा, तो विषय से दूर रखना जरूरी है ना। तो विषय क्या है कि उसको उसको देख के तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत कुछ ना कुछ बोल लेता है, तो क्या बोलेंगे आप दूर रहो उससे, सेवा भी मत करो साथ में उनको, दूर रहो। तो ये हम संग छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति जो है उसको इलाज करने के लिए ये इलाज बताया जा रहा है। संग के लिए मना करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, हमारी प्रवृत्ति है अपराध करने की उसको बचने के लिए कह रहे हैं। और किसका अपराध कर रहे हैं, वैष्णव का अपराध होने वाला है, तो वो भयंकर है जीव के लिए, इसलिए दूर रखना जरूरी है। दूर रहेंगे सुधर गया फिर वापस मिल सकते हैं। It is according to scriptures. Yes, bro.
और मन कहता है कितना बेकार आदमी, घटी से घटिया आदमी इसके सामने में आ गया, बट द इंटेलिजेंस नोज कि नहीं, आई हैव टू बी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिम, एंड इफ द इंटेलिजेंस ओवरपावर्स द माइंड, दैट्स द राइट वे टू डू इट। यू कैन नॉट, बिकॉज माइंड विल हैव मिलियंस ऑफ थॉट्स एट द मोमेंट, यू नो सो मेनी थॉट्स आर कमिंग इन, एंड जनरली नेगेटिव थॉट्स आर मोर पावरफुल जनरली, सो देयरफॉर the intelligence has to immediately protect ourselves. Okay, I am supposed to be happy after seeing him. I am supposed to offer my obeisances after seeing him. I will do it. So that's the action. Intelligence uses that prerogative of throwing away that thought. And that's the right thing to do at that point.
Correct. And also, भक्तों के संग में जो हमारे काउंसलर है, गुरु है, शिक्षा गुरु है, अगर हमको ये समस्या बार बार होती है तो सलाह भी करना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने अभी आपने प्रश्न पूछा, वैसे सलाह करनी चाहिए ताकि कुछ गाइडेंस मिलेगा हमको। अगली बार हमारे सामने वो व्यक्ति आएगा जिसको देख के हमको गुस्सा आता है तो क्या करना है, तुरंत हमारे मन जैसे प्रभु जी ने बताया बुद्धि से हम उसको हैंडल कर सकते। तो शेल्टर ऑफ डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी भक्त का सहारा होना चाहिए, इससे हम अपना दिल खोल सकते हैं, दिल की गंदगी बताने की हिम्मत कर सकते हैं। एक ऐसा भक्त कम से कम होना चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छा है, एक तो होना ही चाहिए जिसके साथ अपने दिल का जितना मैल है ना वो हम बताने की हिम्मत कर सकते हैं उसके सामने नम्र होकर, क्योंकि अपने अंदर जो गंदगी है वो बताना इतना साधारण बात नहीं है। मैं तो लोग सोचते हैं कि मैं इतना बढ़िया भक्त हूँ, मेरे मन में इतनी गंदगी में कैसे किस मुझे बताऊँ, मेरे मुझे कैसे बता सकते, लेकिन ये भक्त ऐसा होना चाहिए। चुन के रखो, बचेंगे हम आगे जाकर, कहीं ना कहीं व्यक्त करेंगे ना अपने मुंह से नम्रता से तो बच सकते हैं। नहीं तो फिर मन जो वैसे प्रभु जी बताया ना, ये भयंकर झंझावात की तरह नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं, सुनामी की तरह ऐसे अपने आप को प्रभावित कर देते हैं, फिर ओवरवेल्ड विद दोज नेगेटिव थॉट्स। समटाइम्स वी आर लाइक अभी जब अच्छा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो इतना भयंकर विचार से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, तो उसको बचने के लिए कोई सहारा होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, तो हम बच सकते हैं। वृद्धराज श्रीमद भागवतम की जय।